Vaishnava. But that devotee may do not know, he never went to the college, or he don't have a PhD in Sanskrit language. He want to glorify Krishna, somehow or other he pronounced Vishnava. But a Vishnava actually is not good pronunciation. Vaishnava is perfect pronunciation. But here Lord says, Ubhayastu, that both person, Shubham Punyam, will get equal result. Because Bhavagrahi Janardana, the Janardana is the supreme personality of Godhead. He is not looking for how much qualified material you are or how much degree you have, but how much devotion you have in your heart. That's why he prays. When sometime you try to pray, you try to learn, you can make mistake, it is easily. Oh Vaishnavas and Vaishnavis, if there is any mistake in English language, forgive me. But now our Radharas Vihariji representative send the message. I should speak in Hindi. I also feel comfortable myself when I speak in Hindi. That's okay. Because yesterday slok also said, when authority says something, if we simply follow without any argument, then it is very easy to go towards devotional service. It is my duty, I should respect authority. And when he sent this message, thank you, Prabhuji, कि आपने मुझे हिंदी में कहने के लिए बोला. मैं जब यहाँ आया और भी कुछ भक्त मुझे कहे जो प्रभु जी आप हिंदी में क्लास देना, मैंने कहा ये डिसीजन तो मैं ले नहीं सकता, इसलिए आप ऑथोरिटी से बोलिए. परंतु आई फील सो हैप्पी, आई कैन बी मोर कंफर्टेबल व्हेन आई स्पीक इन हिंदी लैंग्वेज बिकॉज आई एम नॉट क्वालिफाइड इन इंग्लिश. बट श्रील प्रभुपाद एस्टैब्लिश दिस मूवमेंट बेस्ड ऑन इंग्लिश. So we should respect that and learn to speak good English. And in India, if you speak English, is okay. But in Western country, when you speak in English, if you make mistake, people laugh and they make a joke. Or Indian guy try to speaking in English. Sometimes it is happen. Okay? तो आइए भक्त लोग, हम लोग इस श्लोक का अध्ययन करते हैं. अध्याय 18 and इट इज 18 अध्याय, आई थिंक इट इज चतुर्थ स्कंद और श्लोक संख्या 4. तान अतिष्ठति, सॉरी अतिष्ठति पालन, सॉरी यह सम्यक तान अतिष्ठति उपायान पूर्व दर्शितान अवर हीना सधया उपेत उपयान बिंधते अंजसा तानातिष्ठति यः सम्यग् उपायन पूर्वदर्शितान अवराह श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दतेंजसा तनातिष्ठति यः सम्यग् उपायन पूर्वदर्शितान अवराह श्रद्धयोपेत उपेयान विन्दतेंजसा तनातिष्ठति यः सम्यग् उपायन पूर्वदर्शितान अवराह श्रद्धयोपेत ಕುಪೇಯಾನವಿಂದ ತೆಂಜಸ. ನಾನತಿಷ್ಠತಿಯ ಸಮ್ಯ ಉಪಾಯನ ಪೂರ್ವದರ್ಶಿತಾನ್ वर्ग में कोई अनुवाद एंड तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। जो कोई प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए नियमों तथा आदेशों का पालन करता है वो व्यवहारिक कार्य में उनका उपयोग कर सकता है। ऐसा व्यक्ति सरलता से जीवन तथा इच्छाओं का भोग कर सकता है। तात्पर्य, वैदिक नियम हमें प्रेरित करते हैं कि हम महापुरुषों के पदचिन्ह का अनुसरण करें। महाजन एन गतः सह पंथः, इस प्रकार हम अपने इस जीवन तथा अगले जीवन में लाभ उठा सकते हैं और अपने भौतिक जीवन को भी सुधार सकते हैं। प्राचीन ऋषियों तथा मुनियों द्वारा स्थापित नियम का पालन करते हुए हम जीवन का उद्देश्य समझ सकते हैं। इस श्लोक का अवर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी का अर्थ है अनुभवहीन। प्रत्येक बद्ध जीव अनुभवहीन होता है। प्रत्येक व्यक्ति अबोध जात अर्थात जन्मतः मूर्ख होता है। आजकल सभी प्रजातांत्रिक सरकारों में सभी प्रकार के मूर्ख तथा धूर्त निर्णय करते हैं, लेकिन वे क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, उनके विधान का क्या परिणाम निकलता है? वे आज नियम बनाते हैं और कल उसे मिटा भी देते हैं। एक राजनैतिक दल देश का उपयोग एक उद्देश्य के लिए करता है तो दूसरा दल दूसरे प्रकार की सरकार बनाकर सभी नियमों तथा विधानों का अंत कर देता है। यह सर्वित चर्वण विधि पुनः सर्वित चर्वणा नाम मानव समाज को कभी सुखी नहीं बना सकते। मानव समाज को सुखी तथा संपन्न बनाने के लिए हमें मुक्त पुरुष द्वारा दी गई आदर्श विधियों को स्वीकार करना होगा। हरे कृष्ण। गतकाल की श्लोक में कुछ बातें हमारे ब्राह्मण वर्गों के लिए था जो सोसाइटी के सर हैं। पुरुष सूक्त मंत्र वेद मंत्र है, वो भगवान की ही वाणी। वेद मतलब है भगवान का, भगवान के ओर जाने के लिए आलोक। उन वेद मंत्रों का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण श्लोक है उसको हम पुरुष सूक्त मंत्र कहते हैं। एमंग द ऑल वेद द पुरुष सूक्त मंत्र द टॉप मोस्ट वन। इसलिए भारतवर्ष के और विश्व के जितने भी पुजारी वर्ग हैं, भक्त वर्ग हैं, जब भगवान कृष्ण नारायण विष्णु शालग्राम शिला इत्यादि की पूजा का प्राकट्य होता है तब ये पुरुष सूक्त मंत्र ही एक प्रधान मंत्र के रूप में उनकी पूजा और अर्चना में आता है, जिसको हम सहस्रा शिरीषा पुरुष सहस्राक्षम सहस्रपाद सहस्रपा, ये इसकी प्रणव और आद्य मंत्र से शुरू होता है और उनके बीच एक मंत्र आता है। ब्राह्मणस्य मुखम आसीत् बाहुराजन्यकृतः उरुं तादस्य यद् वैश्यः द्रायं पदाभ्यं अजायत चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यम अजायत मुखाद इंद्रम अग्निश्च प्राणाद अग्निर्जायत। तो मुखा, भगवान के मुखारविंद से ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुआ। तो इसलिए ब्राह्मण की जितने भी कार्य सोसाइटी के लिए वो सब वाणी से ही शुरू होता है। मैंने बार बार इस बात पर ध्यान दिया कि वाणी एक भगवान के बहुत बड़ा अवदान है मानव जाति के लिए, प्रत्येक मानव जीवन के लिए। क्योंकि सवेरे से लेकर जब तक हम जगते हैं और फिर सोने जाते हैं तब तक ये वाणी की उपयोग करते हैं। ये वाणी की उपयोग इतनी सुंदर ढंग से करना चाहिए जो शास्त्रों का आदेश है। मैंने बार बार गीता की उस श्लोक को आप लोगों के सामने लेके आना चाहता हूं जो भगवान का आदेश है। भगवान कहते हैं अनुद्वेग करंग वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयं तपः उच्यते। हे पृथा पुत्र अर्जुन, ये गुण, ये सिम्टम्स वाणी की तपस्या है। कौन सी वाणी की तपस्या है? ना पहली बात ठाकुर जी ने कहा अनुद्वेग करंग वाक्यम, ऐसी वाणी प्रयोग करो, ऐसी बोली बोलो जो दूसरों के मन में ठेस ना पहुंचाए, उसको हट ना करे, दुख ना पहुंचाए। ये प्रथम भगवान कहते हैं अनुद्वेग करंग वाक्यम। दूसरी बात ठाकुर जी कहते हैं सत्यम, जो वाणी आप बोलो वो सत्य के ऊपर आधारित होना चाहिए, अपनी मन की काल्पनिक दृष्टि से नहीं। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा, मेरे बाल्यकाल के अनुभव। हरे कृष्ण मंदिर के कृष्ण भक्ति जब मैं प्रैक्टिस करता था इस बॉम्बे मंदिर में, एक दिन की बात ऐसी हुई, गिरिराज स्वामी संन्यास आश्रम में टेम्पल प्रेसिडेंट थे, उस समय तमाल कृष्ण गोस्वामी जीबीसी थे। गिरिराज स्वामी एक दिन हमारा माताजी के आश्रम में रहने वाली एक माता देवहूति नाम में थी, जो कीर्तनंद स्वामी जी से उन्होंने दीक्षा ली थी, और अमोघ लीला प्रभु जो लाइव मेंबरशिप डिपार्टमेंट के उस समय इंचार्ज थे, और समारोह दर जब वो पाकिस्तान में गए और रथ यात्रा शुरू किए, कुछ प्रॉब्लम्स आई उसको देखे, और धीरे धीरे कीर्तनंद जी ने इन माता जी को भी पाकिस्तान भेज दिया, और पाकिस्तान में वो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहती हुए भी नष्ट की ब्रह्मचारी रूप में वो जीवन यापन करते थे। जब संकीर्तन करके वापस आते थे, वो भक्तों का जो झूठा प्रसाद, भक्तों का प्रसाद तो झूठा नहीं होता, बट जिसको हम गार्बेज में डालते हैं, अगर प्रसाद ना हो उसको उठा करके वो खा के सोते थे मंदिर में, और वो कभी भी अपने शरीर को नीचे डाल के नहीं सोते थे, ऊर्ध्व ऊपर में सोते थे, क्योंकि शास्त्र में प्रमाण है ब्रह्मचर्य अगर मुख लगा करके भूमि में सोए, ये भूमि भी एक माँ है, जो अच्छे ब्रह्मचर्य उन नियम का पालन करते हैं, पर वो उस प्रकार ब्रह्मचर्य थे, परंतु किसी ना किसी प्रकार से उन्होंने देवहूति माता से शादी की। देवहूति माता बॉम्बे मंदिर में आई और एक दिन मंदिर में थी, और एक स्वभाव है जी, हम कुछ बात को जब चर्चा करते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीन और तीसरे से चौथा, बड़े बड़े मैनेजमेंट की एक लॉ है जी, आप कभी भी किसी बात को तब तक किसी से ना कहो जब तक बात की कार्यता सिद्धि की प्राप्त ना करें, क्योंकि पंचमुख में बात के रूप अलग हो जाता है। देवहूति माता ने कहा जे मैं आज स्वप्न में गिरिराज स्वामी को देखा, वो हमें मंगल आरती में जगा रहे थे आके, उस समय एक ब्रह्मचारी, उस समय एक कुआ था, आज मैं तो कुआ नहीं देख रहा हूं, सब बंद हो गया है, उस कुआ के ऊपर सब ब्रह्मचारी लोग बैठ करके कभी अपनी अपनी बातें करते थे, और माता लोग उधर से प्रसाद मंदिर में जाना आश्रम में जाना जाते थे, वही रास्ता एक ही था। तो एक ब्रह्मचारी उस रास्ता पर जा रहा था, उसके कान में ये बात पड़ी जो गिरिराज स्वामी माता जी आश्रम में घुसे थे, आए थे। देखो सेंटेंस की आधी बात वो कान में सुना और आधी बात उसके कान तक पहुंची नहीं थी, वो पहले हो चुकी थी। तो जब वो ब्रह्मचारी ने सुना गिरिराज स्वामी माता जी आश्रम में गए थे, वो तुरंत जाकर के दूसरे ब्रह्मचारी को बताया, देवहूति माता बोल रही थी ब्रह्मचारी आश्रम में सन्यासी गए थे, पर सन्यासियों का तो काष्ट और पाषाण मूर्ति का दर्शन भी निषेध है, वो माता जी आश्रम में क्या कर रहे थे। पर ये केवल ब्रह्मचर्य की वापस की बात थी, पर बात धीरे धीरे कमांडर तक पहुंचा, कमांडर ने वो बात को और आगे बढ़ाया, और बात बढ़ते बढ़ते गिरिराज स्वामी के कान तक पहुंचा। तो गिरिराज स्वामी को बड़ा वैसे होने लगा, मैं माता जी आश्रम में गया था, ये बात किसने कहा। तो उन्होंने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके गिरिराज स्वामी पूछते हैं जे मैं माता जी आश्रम में कब गया था, किसने बोला, तो एक से दो, दूसरे से तीन, तीसरे से तीन, चौथा चौथा, इस प्रकार ढूंढते ढूंढते वो ब्रह्मचारी निकला, जो वो माता जी निकली जो ये बात बोल रही थी। तो माता जी को बुलाया गया, तो देवहूति माता बोलती है मैंने तो बोला नहीं आप ब्रह्मचर्य आश्रम में गए थे, मैं तो ये बोला आज रात को मैं स्वप्न में देखा गिरिराज स्वामी आके ब्रह्मचर्य माता जी आश्रम में हमको जगा रहे थे। तो बात का रूप कितने बदल गया। इसलिए पूर्ण बात को सुने बिना जल्दीबाजी से उत्तर नहीं देना, क्योंकि वाणी बहुत अनर्थकारी है। अभ्या बहति कल्याणम विविधं वाक् सुभाषिता सैवे दुर्भाषिता राजन अनर्थाय उपपद्यते। यदि बुरी बात को अच्छी ढंग से प्रस्तुति करोगे उसका फल बहुत मधुर निकल सकता है। बहुत अच्छी बात को यदि कड़वी ढंग से प्रस्तुति कर दो उसमें बहुत अनर्थ की आशंका है। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं, प्रथम बात है भक्त मेरे, यदि गीता का अनुसरण करते हो तो अनुद्वेग करंग वाक्यम, ऐसी बात बोलो जो दूसरे को ठेस न पहुंचाए, और जो बात कहो वो सत्य के ऊपर आधारित हो, मन की कल्पना से नहीं, और वो वाणी सुनने के लिए कर्ण प्रिय होना चाहिए, मधुर। और जो वो बात सुने उसका भी कल्याण होना चाहिए, तभी वाणी की इंपोर्टेंस है, नहीं तो वो व्यर्थ वाणी है। बंध्या वाणी, श्रीमद् भागवत वाणी को बंध्या शब्द में प्रयोग किया है। बंध्या किसे कहते हैं? जो जननी प्रसूति नहीं, संतान को जन्म नहीं दे सकती, वो बंध्या नारी है। तो जो वाणी में भगवत कथा नहीं है, ही तो उपदेश नहीं है, वो वाणी बंध्या गिरह, वो बंध्या के समान है, अर्थात निरर्थक है। तो इस प्रपाट में प्रभुपाद जी ने दो श्लोकों की व्याख्या की। एक श्लोक हुआ महाजन एन गतः सह पंथा, जो जन समाज है, एक प्रश्न है जनता को, पब्लिक को किस रास्ता पर चलना चाहिए, एक प्रश्न हुआ, तो उसकी उत्तर में ये श्लोक है। ये श्लोक महाभारत से उद्धृत हुआ है। महाभारत में जब पांडवों को यक्ष रूपधारी यमराज ये प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को, पांडव एक एक मर चुके हैं, भीम, दुशासन, नकुल, सहदेव सब मृत्यु को वरण हो चुके हैं, क्योंकि उनको प्यास लगी थी, और यक्ष रूपधारी यमराज जी ये परीक्षा करने आए थे, मेरे पुत्र में कितना धर्म परायण शक्ति है उसको मैं परख लो, और वो माया सरोवर बना करके उसके ऊपर यक्ष के रूप में बैठ करके बोले, देखो पांडव, बिना प्रश्न का उत्तर देते हुए यदि तुम ये जल को पान करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया, पहले पानी पी लिया तो उनकी मृत्यु हो गई। तो युधिष्ठिर महाराज बड़े भाई थे, तो वो ढूंढते ढूंढते जब भाइयों को पहुंचे तब देखे यक्ष ने वही प्रश्न दिया, देखो तुम्हारे भाइयों की ये गति हुआ है, पहले प्रश्न का उत्तर दो। उनमें से यक्षराज जो जो प्रश्न पूछे थे उनमें से एक प्रश्न ये था, जे महाजन एन गतः कह पंथा, ये प्रश्न पूछा यक्षराज ने युधिष्ठिर महाराज को। तो युधिष्ठिर महाराज ने उसकी उत्तर में ये दिया था, महाजन एन गतः सह पंथा, ये जिस रास्ता पर महाजन व्यक्ति चले गए हैं वही पथ है जन समाज के लिए। पथ क्या है? ना महाजन एन गतः सह पंथा। तो एक बार दूसरा प्रश्न उठता है, ये महाजन है कौन? श्रीमद् भागवतम अजामिल उपाख्यान में, अजामिल उपाख्यान में यमराज जी इसी श्लोक की उत्तर देते हैं। स्वयंभो नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रह्लाद जनक भीष्म बलेर व्यास किम अयम। बारह महाजन है, उन बारह महाजन के नाम इसी श्लोक में वर्णन है। यमराज की मुखारविंद से निस्सृत यमराज कहते हैं स्वयंभू, स्वयंभू नाम किसका है? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मात्मा हो सूरजेष्ठ परमेष्ठिन पितामह हिरण्यगर्भलोकेशय स्वयंभु चतुरानन धाताब्जो निदुगुहीन विरंती कमलासन स्रष्टा प्रजापतेर वेधा विधाता विश्वसृग विद। ये अमरकुश पुराण का स्टेटमेंट है। अमरकुश पुराण में सभी देवता और देवियों के नामों का वर्णन है। जो संस्कृत के स्कॉलर लोग हैं इसका अध्ययन उनको करना पड़ता है और एग्जाम टेस्ट देकर के पास ना करे तो उनको डिग्री नहीं मिलती। और ये जभी जभी अष्टादश पुराण को आप स्टडी करो, क्योंकि दैपायन मुनि व्यासदेव जी ने सभी शास्त्रों को संस्कृत भाषा में लिखी है। और संस्कृत भाषा में जैसे स्वयं शब्द का अभी उच्चारण हुआ, स्वयं भू नारद शंभु, तो अगर ये सूत्र आपको ध्यान नहीं है तो आप ढूंढते रहोगे स्वयंभू का नाम किसका है, शिव है, ब्रह्मा है, दी से ज्यादा है ना। स्वयंभू मतलब है जैसे मैंने नाम का वर्णन कर दिया, आंखें बंद करके स्वयंभू है ब्रह्मा जी, तो एक अथॉरिटी महाजन हुए ब्रह्मा स्वयंभू, दूसरे हुए नारद उनके पुत्र शंभु। मैंने काल इन पवित्र नाम को ग्रेट वैष्णव का उच्चारण किया था और आज भी आपके कर्णों को हर में उसको थोड़ा गुंजार कर देता हूं, शंभु शंभु ऋष पशुपति शिव सुलीन महेश्वर ईश्वर सर्व ईशान शंकर चंद्रशेखर भूतेश खंड परशु गिरीश गिरीशो मृढ मृत्युंजय कृतिवास पिनाकी प्रमथाधिप उग्र कपर्दि श्रीकंठ श्रीकंठ कपाल व्रत वामदेव महादेव विरूपाक्ष त्रिलोचन कुशानु रेत सर्वज्ञ झुर्झटी नीलोहित हर स्महर भर्ग्य त्र्यंबक त्रिपुरांतक गंगाधर अंधकरिपु क्रतुध्वंसी वृषध्वज भव भीम स्थाणु रुद्र उमापति ही। ये भगवान शिव के पवित्र नाम है। भगवान विष्णु के सूत्र में विष्णु नारायण कृष्ण वैकुंठ विश्वर स्रव दामोदर ऋषिकेश केशव माधव स्व दैतारी पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज पीताम्बर अच्युत सारंगिन विश्वकसेन जनार्दन उपेन्द्र इंद्रवरज चक्रपाणी चतुर्भुज पद्मनाभ मधुरीपुर वासुदेव त्रिविक्रम देवकी नंदन सौरी श्रीपति पुरुषोत्तम वनमाली बलिध्वंसी कंसरात्रि अधोक्षज। ये जो अधोक्षज नाम लास्ट में आया भगवान विष्णु के, एक बार श्रीमद् भागवत देखिए, सबई पुंसं परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे अहे त्वक्य अप्रतिहता सो आत्मा सुसंप्रसीदति। अधोक्षजे, अधोक्षजे आया शब्द का अर्थ हुआ भगवान नारायण विष्णु कृष्ण, क्योंकि सूत्र याद है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए ऐसे विद्यार्थी बने, हमें पुस्तके सचया विद्या परहस्ते स्वयधनम न तत्कार्जी सुकर्मसु न सा विद्या न तद्धनम। जो विद्या पुस्तक में लिखी गई हो ग्रंथ में और जो अपना उपार्जन किया हुआ धन दूसरे के हाथ के कंट्रोल में हो वो कार्य आने पर काम नहीं देता, क्योंकि आप ढूंढता रहो वो बद्रीनाथ की यात्रा किया हुआ पैसा तो उसके पास है, हमें जब काम लगा हमारे पास पैसा नहीं है हम किसके पास जाए। तो पुस्तक में जो विद्या है, कोई व्यक्ति आपको रास्ता पर एक प्रश्न पूछ, पुस्तक तो आपके पास है ही नहीं तो फिर कैसे उत्तर दोगे, वो सब इस कंप्यूटर में फीड होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड तपस्या ऑस्टेरिटी। ब्रह्मसात तपसा ब्रह्मचर्येन, ब्रह्मचर्य जीवन की तपस्या क्या है। ठाकुर जी भी पहली श्लोक जो मैं बताया अनुद्वेग, उसमें एक है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब ग्रंथों का साधना बा पाठ करना, उसको मेमोराइज करना, ये ब्रह्मचर्य का एक अच्छा गुण है बा तपस्या है। तो महाजन ये नगत सपंथा की जो 12 अथॉरिटी है, एक हुए ब्रह्मा, एक हुए नारद, एक हुए भगवान शिव और दूसरे हुए नारद स्वयंभू नारद शंभु कुमार, चार कुमार मनु महाराज जो स्टेटमेंट दिए हैं मानव समाज के लिए, प्रह्लाद जनक भीष्म भीष्म पितामह, प्रह्लाद जनक भीष्म बलि बलि महाराज, बलि महाराज ने भगवान के लिए एक बलि नाम स्तोत्र रचना किया, अगर भक्त उसका पाठ करे बहुत भक्ति बढ़ता है। जिस पाठ को करते करते भगवान ने उनके मस्तक के ऊपर चरण को रख करके पाताल में ले लिया और आज तक भगवान उसके दरवाजा पर सिपाही बन करके खड़े इन स्तोत्र से, इन स्तोत्र से। गोविंदम गरुड़ध्वजम पवित्रम गोपीवल्लभम गोवर्धनो धरम धीरम तंग वंदे गोमती प्रियम। देखो उस स्तोत्र में गोमती शिला का चरित्र में वो बोलते गोमती प्रियम, हे ठाकुर जी जो गोमती की नदी से जो चक्र है वो आपको बहुत प्रिय है, ये बलि महाराज की स्टेटमेंट है नाम स्तोत्र में, आप लोगों को पाठ करना चाहिए। तो ये जो 12 ऑथोरिटी है ये जिस रास्ता पर चले हैं वही रास्ता ही जन समाज के लिए है, पर कभी कभी जनता की जो लीडर है वो उनको मिसगाइड करता है क्योंकि अपनी इच्छा को बीच में रखता है। जब कोई पवित्र कार्य में भगवत भक्ति में अपनी कल्पना आ जाए तो उसकी वातावरण उसकी रूप उसकी स्वाद बिगड़ जाता है क्योंकि वो पवित्र अवस्था में नहीं रहता, क्योंकि अपनी कलुषित बुद्धि पवित्र सेवा में आ गया ना। इसलिए ये विचार को दुर्जन विचार कहा गया है शास्त्रों में। हम संसार में 3 प्रकार के प्राणी देखते हैं और रोज उनसे डील करते हैं। प्रथम प्राणी वो है जो मानव है, हम सभी मानव है, मानव मात्र ने गलतियां हैं, कोई मानव नहीं कर सकता मैं गलती से परे हूं, क्योंकि वो मानव है, मनुष्य मात्र न गलतियां हैं। किंतु जब गलती हो जाए, जब कोई गुरुजन सत्य को जानने वाला व्यक्ति आकर के आपसे कहे देखो प्रभु भाई बंधु ये गलती है, तो उस समय व्यक्ति अगर कहे तुम कौन हो मुझे सिखाने वाला, अनपढ़ गंवार मेरे पास इतनी डिग्री है मैं तुमसे किससे सीख सकता हूं, अगर ये विचार में आए उसी को शास्त्रों ने आसुर की वृत्ति कहा है। क्योंकि गलती होने पर जो गलती में अहम रखता है वो असुर है, देवता कौन है ना। गलती होने के बाद जब उसे अनुभव हो जाए फिर वो पश्चाताप में आ जाता है, फिर पश्चाताप की विधि है और वो पश्चाताप करता हुआ बहुत बड़ा सुंदर भक्त बनता है। जैसे मृगारी हंटर, हंटर की खड़े हो गए उसमें कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जया किं नाम रूप अधिकं किं तत् सुदाम्नो धनम वंशकः विदुरस्य यादवपते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलं न तु गुणै भक्ति प्रियो माधव। पहला श्लोक में मैं कहा भावग्राही जनार्दन, पर ये दूसरी श्लोक में ठाकुर जी कहते हैं भक्ति प्रियो माधव, भगवान भक्ति को प्रिय है, भगवान को भक्ति प्रिय है। नहीं तो यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि तुम्हें आचरण नहीं आता आप भगवान के चरण तक कैसे पहुंचोगे, आचरण तो जन्म से किसी को नहीं होता, क्योंकि इस श्लोक में लिखा है प्रभुपाद जी लिखते हैं जे जन्म से सभी मूर्ख है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात द्विज उच्यते वेदाभ्यासे भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण की पदवी तभी व्यक्ति को लगता है जब वो ब्रह्म को ठीक ठीक रूप से जानता है, फिर वो जातिवाद में नहीं आता मैं स्त्री हूं पुरुष हूं, तुम पाकिस्तानी हो मैं हिंदुस्तानी हूं, तुम जापानी हो मैं अमेरिकन हूं, इस सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम उससे वो ऊपर उड़ जाता है। और हमारे जगन्नाथ जी के भक्त लिखते हैं बड़े सुंदर सूत्र में आत्मा को आपने उद्धरे निष्काम जन्मे जा शरीरे त्रिगुणे संग जार नाई जन्म मरण निस्तरई। जन्म और मरण से परे होने के लिए जो गुण है, जिसके हृदय में निष्काम भावना की उदय हो जाए और वो त्रिगुण से परे हो जाए, सत्य गुण रजगुण और तमगुण से, वही व्यक्ति ही अपने आत्मा को स्वयं उद्धार करने में समर्थ है, नहीं तो नहीं। तो व्याध उसको, उसका पास कोई आचरण नहीं था, वो व्यवहार नहीं जानता था। वैष्णव को देखने से प्रणाम करना होता है, एक अच्छा विधि है, पर उसको मालूम नहीं है। वो वैष्णव का मजाक उड़ाता था और क्या करता था ना, अपनी बाहुबल से, तीर से, धनुष से वो पशु पक्षियों को मारता था और तड़पा तड़पा करके उनको मत देता था। नारद जी भक्त थे, जब रास्ता पर गए, देखे मुर्गारी इस प्रकार तड़प तड़प के पशुओं को मारता है, उन्होंने उनको उपदेश दिया। चाणक्य कहते हैं, उपदेश ही मूर्खाणाम केवलम केवलम क्रोधवर्धनम। और फिर चाणक्य जी कहते हैं, सर्प को दुग्धपान पिलाओगे उसकी शक्ति बढ़ेगा, जहर को विषवर्धनम, सांप को दूध पिलाओगे उसके अंदर जहर बढ़ेगा, और जो दूध पिलाता है उसी को सांप काट देता है। इसलिए समाज की गाइडेंस करने वाला व्यक्ति यदि दुर्जन वृत्ति में आ जाए, संसार का मंगल नहीं हो सकता। इसलिए दुर्जन की कुछ लक्षण भी शास्त्रों ने दिया। प्रथम श्लोक नीति शास्त्र कहता है दुर्जन के बारे में, दे तक्षकस्य विषम दंते वृश्चिकायां पृच्छ विषम मक्षिकायां विषम। हंसते देखो, मक्खी खींच देता है ना दोनों हाथ को, तो सब जहर को उगल देता है। मक्खी यहां पर वर्णन है मधुमक्खी का, मधुमक्खी का मुंह में जहर भरा होता है। मक्षिकायाम विषम मुखे दुर्जन स्याद सर्वांगे विषम। सर्प की जहर दांतों में है और बिच्छू का जहर पूंछ में है, मक्षिका मधुमक्षी का जहर मुख में है, और जो दुर्जन व्यक्ति है उसकी सर्वांग में जहर भरा है। इसलिए नीति शास्त्र ने और एक श्लोक कहा दुर्जन के बारे में, जो मिसगाइड करते हैं सोसाइटी को। क्या कहा? दुर्जनस्य संसर्गात् साधूनां दण्डमिष्यन्ति लहु संसर्गात् वह्नि तरणं सहते यथा। इसकी उपमा दिया, दे दुर्जन व्यक्ति की संग जो करता है, अकाल में उसकी मृत्यु आ सकती है, ही संग में आया। इसकी उदाहरण दिया लोहा को, कुमार साल में गए हो भक्त लोग, जब देखो कुमार कैसे लोहा को हाथ के अंदर अंदर डाल देता है, जब लोहा पक जाता है फिर हाथुड़ में कितना पिटाई करता है, तो उसको रूप देने के लिए। उसी प्रकार क्योंकि अग्नि बहुत अच्छा है, पर लोहा उसके अंदर चले जाने से लोहा में अग्नि को आना पड़ा, इसलिए कुमार जब पिटाई लोहा को करता है अग्नि भी मार खाता है। ये संग का बात बताया। दुर्जनस्य संसर्गात् साधूनां दण्डमिष्यन्ति लहु संसर्गात् वह्नि तारणम सहते यथा। जब भागवत की कथा हम लोग व्याख्या करते हैं और कली की उपाख्यान आता है, और कली की उपाख्यान हमारा उड़ीसा वर्ग में, हमारा राधा रास बिहार के मंदिर के एक अथॉरिटी उड़ीसा की है, राइट, इनके लिए भी लागू होता है, राइट। क्या बोलते हैं? चरण चुटिया, दिस इज जगन्नाथ लैंग्वेज, चरण चुटिया। जब समय आ जाए वो शरणापन्न है। कली ने क्या किया? कली ने राजा परीक्षित जी के चरण पकड़ लिए, राजा मैं भी तुम्हारा प्रजा हूं, कहां जाऊं, जब वो धर्म की प्रहार, धर्म को प्रहार के ऊपर प्रहार करते हैं राज के परिच्छेद में, तब उनके चरण पकड़ करके उन्होंने कहा मुझे क्षमा कीजिए, मैं भी आपके पास, मैं कहां जाऊं। तभी राजा दयावश होकर के शरणार्थी शरणापन्न को प्राण दंड नहीं है बोल के उन्होंने उनको चार स्थान दिए और पंचम स्थान भी सुवर्ण को दे दिए दान में। उस समय हम इन स्तोत्रों को वर्णन करते कली को पूर्ण रूप में व्याख्या करने के लिए। समय आया चरण, और जब समय आया चुटी को पकड़ के नीचे खींचना, क्योंकि चुटी को पकड़ के वैष्णव शिखा क्यों रखते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार क्रोध का जो स्थान है वो मस्तक के पीछे भाग में किसी स्थान पर है। जब ये शिखा को हम गांठ चढ़ाते उसमें एक वजन बनता है, और वो वजन की बाल समूह में क्रोध संतुलित, मतलब क्रोध कंट्रोल में रहता है। इस शिखा का ये कारण है, और शिखा का एक कारण है जब भव सागर में हम डूबने लगते हैं भगवान कृपा परवश होकर के डूबता हुआ व्यक्ति को इस शिखा के माध्यम से खींच लेते हैं। पद्म पुराण की स्टेटमेंट है पंक, पंक में जैसे कमल के फूल पंक से उत्पन्न होकर के समस्त जल के ऊपर आकर के विकसित होता है, उसी प्रकार हे ठाकुर जी आप इतने दयालु हो, ये भवसागर रूपी कीचड़ में गिरे हुए भक्तों को भी आप शिखा को पकड़ करके खींच लेके गोविंद वैकुंठ धाम ले लेते हो, ये भक्तों का वर्णन है। तीसरा श्लोक में एक सुंदर सा वर्णन दिया, जो जो दुर्जन व्यक्ति है, जैसे काल हम एक उदाहरण दिए थे भगवत गीता से, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानि हि विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति का एक लक्षण है, तीसरा लक्षण प्रत्यक्षे प्रियवादिनम परोक्षे कार्यहंतारम वर्जयेत एतद् मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। बोले यहां पर कली की फिर चरित्र है। कली कितनी मीठा शब्द में अभी प्रणाम किया राजा परीक्षित को, परंतु हम संसार में जब डीलिंग्स करते हैं बिजनेस व्यक्ति के पास जाते हैं, बिजनेसमैन बड़े स्वीट होते हैं मुख से, नहीं तो उनकी बिजनेस चल नहीं सकता। हाँ, तो वो क्या करते हैं ना, हृदय में ये जहर को भरे रखे हैं जे इस व्यक्ति पैसा वाला पार्टी है, इससे पैसा हम कैसे निकालें, ये उद्देश्य है ठकने का ना। परंतु बोलते कैसे हैं, आप बड़े अच्छे हो, हमारे दुकान में आए हो, आपका हम स्वागत करते, ठंडा पियोगे, कुछ ये पियोगे वो पियोगे, पहले खुश करना चाहते हैं, राइट। प्रत्यक्ष जब देख ले आप बहुत महान हो, अच्छे हो, पर जब आप चले जाओ पीठ के पीछे क्या करते हैं, ये व्यक्ति हमारा दुकान में क्यों आया था, इसको सामान नहीं देना क्योंकि मैं इसे पसंद नहीं करता। कार्य हंतारम, होने वाला कार्य को पीछे से बिगाड़ देते हैं। ऐसे जो व्यक्ति हैं, शास्त्र कहता है वर्जयत, उनको वर्जन करना चाहिए, क्योंकि विषकुंभम पयोमुखम, वो लोटा में जहर भर के उसके ऊपर थोड़ा दूध डाल करके बोलते प्रभु जी आप अच्छे हो इसका पान करो, वो तो मृत्यु है। इसलिए शास्त्र और भी एक निर्देश दिया, दुर्जनस्य हस्ते हस्त सहस्रेण शतहस्तेन वाजिन श्रृंगिनो दशहस्तेन स्थान त्यागेन दुर्जन। यदि बैल दौड़ता हुआ आए, दस हाथ दूर पर रहो क्योंकि श्रृंगधारी मार देगा, दस हाथ दूर पर रहोगे वो विपद तुम्हें अटैक करना चाहे फिर भी नहीं कर सकता, अब बच सकते हो। श्रृंगधारी जानवर से दस हाथ दूर पर रहना चाहिए, हस्ति हस्त सहस्रेण, हाथी अगर दौड़ता हुआ आए 100 हाथ के दूर पर रहना चाहिए, 10 हाथ में नहीं, हाथी चढ़ जाएगा। 100 हाथ के दूर पर रहोगे पागल हाथी से बच सकते हो। हस्ति हस्त सहस्रेण सतहस्ते नवाजिन, घोड़ा दौड़ता हुआ आए 100 हाथ के दूर पर, सौ हाथ, और हाथी आए 1000 हाथ। हस्ति हस्त सहस्र मतलब 1000 हाथ पर दूर में, घोड़ा दौड़ता हुआ आया 100 हाथ दूर में, श्रृंगधारी बैल वगैरह दौड़ते आए 10 हाथ दूर में। पर जहां दुर्जन की बात आया, स्थान त्यागे न, वो स्थान को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सुखी नहीं हो सकते। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं आज के जो लीडर्स हैं, इंग्लिश प्रपाट में प्रभुपाद जी ने डेमोक्रेटिक शब्द का यूज किया, एंड प्रभुपाद जी ने बड़े क्लियर शब्द में इस बात को कहा, गवर्नमेंट के लेवल के जो ऑफिसर्स हैं बा रूलर्स हैं, दे रूल ऑल ऑफ द कंट्री और वर्ल्ड, एंड प्रभुपाद कमेंड द डेमोक्रेसी मीन्स डेमन एंड क्रेजी, असुर और पागलों का सम्मिश्रण है तभी देश चलता है, राइट। पर देश के नागरिक, देश के लीडर भक्त होना चाहिए, जैसे युधिष्ठिर महाराज, राजा पृथ्वी बा परीक्षित महाराज, बड़े बड़े राजा थे बा रूलर्स थे, धर्म परायण। हाँ, हमारा दिल्ली जो है, पांडव किला दिल्ली में है ना, दिल्ली की जो राजधानी है वो पंचकटक दुर्योधन के अंडर में था ना, वहां पर ही युधिष्ठिर महाराज बैठ के थे, रूलिंग करते थे। पर आज दिल्ली के गद्दी में जो जो व्यक्ति बैठे होते हैं उनके नाम में क्या क्या बात सुनते हो। एक पार्टी बोलता है लेट अस बी ओपन, कांग्रेस हमारा लीडर है, प्रभुपाद लिखते हैं, राइट। कांग्रेस बोल रहा है बीजेपी गलत है, बीजेपी के समय में ये चीज हुआ, टेररिस्ट ने ये कर दिया। बीजेपी बोलते हैं कांग्रेस गलत है, कांग्रेस के समय पर ये चीज हुआ, पर हुआ तो दोनों में से ही हुआ, जब दोनों रूल करते थे पब्लिक फिर भी दुखी था, दुखी नहीं था, चाहे कांग्रेस बने और चाहे बीजेपी बने। पर हमारा सोसाइटी ये कहता है अब कोई भी बने पर भक्त बने, भक्त बने तो फिर वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करे हमें तकलीफ नहीं, क्योंकि ये धर्म की परिभाषा को समझता है। अगर धर्म की परिभाषा को बिना समझे, जैसे हम लिखते हैं जन्म से बा इन एक्सपीरियंस, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो अनुभवी नहीं है, अनुभवी जो व्यक्ति है उसको अगर हम गाड़ी पर बैठा दे उसको मजाक उड़ा देगा। बंगाली में एक कहावत है, बानर हाथे सालग्राम नाड़िए नाड़िए निये प्राण। यदि बानर के हाथ पर एक सालग्राम शिला प्राप्त हो जाए, वो सालग्राम शिला को सहस्र शीर्षा मंत्र से पूजा नहीं करेगा, क्योंकि वो अनुभवी नहीं है। सालग्राम शिला क्या है, इज अनवेयर अबाउट इट, वो क्या करेगा, पीट पीट कर उसकी सालग्राम शिला के अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं उनकी जान को निकाल के तोड़ डालेगा। बट राजगद्दी यदि स्त्रियों के अधिकार में आ जाए, कोई निंदा नहीं माताएं, ये शास्त्र है, शास्त्र प्रत्यक्ष है, अगर राजगद्दी स्त्रियों के हाथ में हो वो उसकी पूर्ण रूपेण फल दे नहीं सकते। अगर राजगद्दी बालक के हाथ में जाए, क्योंकि इनमेच्योरिटी, वो उसके लाभ नहीं उठा सकता, पब्लिक को सुखी नहीं रह सकता, और मूर्ख के हाथ में चले जाए फिर भी तकलीफ है, तो होना क्या चाहिए, ना क्षत्रिय की हाथ में राजगद्दी जाए, ब्राह्मण के आदेश से क्षत्रिय परिचालना करे, दिस इज द शास्त्र, तभी पब्लिक सुखी हो सकता है, नहीं तो दुखी दुख है। आज सभी सुखी होना चाहते हैं, और आज का सुख धन के ऊपर बैठा है, जो धन कमाया वो सुखी है, हम यही समझते हैं ना। शास्त्रों ने बड़ी अच्छी बात कहा, धन जब व्यक्ति के पास ना हो क्या क्या होता है, और धन जब आए फिर भी क्या क्या होता है। एक श्लोक की उदाहरण शास्त्रों से मैं देता हूं। माता निंदति, जब धन ना हो उसकी परिभाषा, माता निंदति नाभि निंदति पिता, भृत्य संभासते भ्राता न संभासते, भृत्य कुप्यति नानु गच्छति सुत जायान संतुष्यति, तस्मात् अर्थ उपार्जन कुरु सखे अर्थेण सर्वे वसा। ये सारा संसार भौतिक जगत का धन के ऊपर बैठा है। जितने रिलेटिव साथी संग भाई बंधु कुटुंब ज्ञाति, ये सब धन के साथ जुड़े हुए हैं। जब धन नहीं है, माता निंदती, प्रथम मात्र शास्त्र में कहा, कोख में जन्म देने वाली वो जननी बोलती है तुझे दिक्कत है, इतना बड़ा बेटा हुआ क्या करते हो, मां को एक साड़ी दिया नहीं दिया, किस बात की बेटे हो। माता निंदती, हमारे हरे कृष्ण में ज्वाइन करने वाले व्यक्ति के परिवार कभी कभी ऐसे कहते हैं, पागल हो गए हो, तुम्हारा भविष्य पड़ा है, सामने भगवान का नाम लेते हो, परंतु वो इस बात को भूल जाते हैं, निश्वास नहीं विश्वास कदारुद्ध भविष्यति, जिन बेटे को तुम जन्म दिए हो इसकी प्राण एक पल में कभी भी रुक सकती है। निश्वास जाता है और आता है तो ठीक है, और निश्वास नहीं गया तो वही मुर्दा शरीर कहलाता है, फिर क्या होगा। ये ज्ञान में वो अनभिज्ञ है, इसलिए इसी बात का। तो माता निंदती नाभि निंदती पिता, पिता भी अभिनंदन नहीं करते, पिता बेटा को देख के गला मिला लेते हैं ना, अरे मेरा बेटा जवान हो गया, घर को संभालेगा, अब मैं थोड़ा रिटायर लाइफ में अपना समय बिताऊंगा, पिता भी बोलते तुझे धिक्कार है। नाभि निंदती पिता, भ्राता न संभासते, भाई मुझे अनुभव है, हमारे किसी भक्त के साथ हम उनके घर गए, उनके पास भी दो भाई है, ये भाई को वो इतना पसंद नहीं करते क्योंकि हरे कृष्ण मंदिर जॉइन किया। तुम क्या करते हो, हम तो ये कि वो के उनकी मांग रहती है ये पूरा नहीं कर पाते, तो ये भाई अच्छा नहीं है, और वो दो भाई पैसा कमाते हैं, वो अच्छा थे है? पर समय समय की बात है, उन वो भाई भ्राता न संभासते, एक भाई अपने भाई को क्या बोलता है, ये बोलना नहीं है, आ गया अभी मुझे मांगेगा पैसा और पैसा मेरे पास नहीं है, बोल मैं बिजनेस में गया हूं, दरवाजा बंद कर दे। वन ब्रदर दूसरे भाई के लिए दरवाजा बंद भी कर देता है और छुप जाता है, बोलता है इसको बोलना नहीं, मांगेगा मेरे पास नहीं, कितना दूं। भ्राता न संभासते भृत्य कुप्यति, जो नौकर है उसका काम है नौकरी करना, पर वो मालिक की स्वर में बोलने लगता है, तुम्हारा घर तुम काल से देखना सेठ जी, पैसा नहीं मिला, देखो उसके घर में जो नौकर है कितना पैसा कमाता है, तुम कितने मुझे नौकरी नहीं देते और खाली काम कराते हो, काल से काम में नहीं आऊंगा। वो तिरस्कार करता है प्रभु का, वृत्त कुप्यति नानुगच्छति सुत, घर में जो लड़का है हाईस्कूल में पढ़ने के बाद जब कॉलेज में जाता है बोलता है फटफटी चाहिए, आपने मुझे मोटरसाइकिल नहीं दिया पापा, काल से आपसे मैं बात नहीं करूंगा, देखो उसकी बेटा चढ़ता कैसा है, आप तो मुझे कुछ भी नहीं देते हो, किस बात की बाप हो। नानुगच्छति सुत, जो लड़का है वो पिता के कहने पर नहीं चलता। बाकी रही पत्नी, नानुगच्छति सुत जाया न संतुष्यति, पत्नी भी खुश नहीं रहती है। शास्त्रों में वर्णन है पत्नी तीन बात में खुश रहता है पति से। पति अगर सत्य हो वो तुरंत सबके सामने सत्य को ना बोले, सत्य बहुत कड़वी होता है, सत्य को सहने के लिए हृदय चाहिए, नहीं तो बहुत व्यक्ति टूट पड़ते हैं, जहर खा लेते हैं। इसलिए मनु महाराज की स्टेटमेंट है सत्य के लिए, सत्यम ब्रुयात सत्य कहो, प्रियम ब्रुयात बड़ी सोच समझ के मीठी शब्द में कहो, न ब्रुयात सत्यम अप्रियम बोलो ही मत, यदि सत्य होने पर भी बहुत ही उल्टा रिजल्ट दे देगा। कुछ बातें समझ करके भी अमल ऐसे कैसे हो सकता है, तो फिर मत कहो। पर ये शब्द का अर्थ नहीं आप झूठ भी बोलो, झूठ भी ना बोलो। हे सा भक्ति सनातन, ये सनातन धर्म सिखाता है हमें। ये मनु महाराज की मनुस्मृति की स्टेटमेंट है। सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रिया नानुगच्छति सुत जाया न संतुष्यति। तीन बात में एक आता है, कुछ अलंकार इत्यादि खरीद करके पति को देना चाहिए। कभी कभी बाहर जाए तो कुछ चीज लेके आना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। पत्नी ये समझते मैं कितना भाग्यवान हूं, मेरा पति मेरे लिए खरीद करके लेके आता है, मेरे से कितना प्यार करता है, इसलिए वो खुश रहती है। सब्जी में नमक ज्यादा पड़ गया हो, बंधु बांधवों को बढ़ गया हो, ये नहीं बोला क्या बना दिया तूने, नमक में भरा है, तुम्हें मालूम नहीं हमारे बंधु आने वाले थे, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुकिंग नहीं सिखाई, हृदय जल जाता है, कैसे पति सबके सामने डांट दिया ना। उस समय बुद्धि की यूज करो और बोलो देवी तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे हाथ में इतनी कला है, खाली मिठाई समझता है, पर आज थोड़ा नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है, कल से थोड़ा कम डालना, फिर भी सब्जी बहुत अच्छा है। अरे मेरे पति बहुत अच्छा है, नमक होने के बाद भी मुझे संभाल लिया, परंतु पति ने कहा नमक है, परंतु उस ढंग से नहीं कहा। वही तो बात है जवान की, बिजनेसमैन की और श्रील प्रभुपाद की। जिहाग्रे बसती लक्ष्मी, जिहाग्रे बंधु बांधव, जिहाग्रे मरणम ध्रुवम। ये जीव बड़ा कमाल का है, ये जीव में भगवान लक्ष्मी की निवास है। वैष्णव लोग कभी कभी वाणी की व्यवसाय कर देते हैं, वाणी व्यवसायी सब व्यवसायी से उच्च पद पर है। प्रभुपाद जी को देखिए, प्रभुपाद जी ने किसके घर में जाए किसका खून थोड़ी किया, प्रभुपाद जी ने सिर्फ शास्त्रों से सुंदर शब्दों से कहा। जब इनके पास केवल $40 थे अमेरिकन, ₹40, और हाथ में लेकर के जलदूत में बैठ करके चल गए श्रीमती मुरार जी, राइट। वाणी व्यवसाय बहुत बड़ी ऊंची व्यवसाय है, और उस वाणी से एक मंदिर ये भी है जो पर हम 200 भक्त बैठ करके रोज प्रसाद खा करके कीर्तन करके नाचते हैं, इसकी चर्चा तो बहुत सुंदर हो सकता है। तो जिहाग्रे वसती लक्ष्मी, जिहाग्रे बंधु बांधव, जिहाग्रे बंधनम भयम। ये जीव के अग्रभाग में मीठे बोलोगे तो सारा बंधु बांधव एकत्र होते हैं, कड़ू भी बोलोगे तो बोलते कौन जाएगा, उसका शादी है, जाने दो, मुझे जाना नहीं है, राइट। बंधु बांधव, और ये जीव के भाग्य में बंधनम भयम, कोर्ट में जब कोई दोषी जज के सामने खड़े होकर के मिथ्या भाषण कर दे और वो पकड़ा जाए, जज उसको जेल दे देता है क्योंकि मिथ्या बोला, प्रूव हो गया ये सच नहीं है। हमारे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो पूर्वतन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जब गद्दी पर बैठे थे, उनका स्नेह एक सेक्रेटरी नहीं, मतलब सेक्रेटरी जैसी कनेक्टेड स्त्री से हो गया। तो ऑपोजिशन पार्टी जो थे उन्होंने उसको इतनी सुंदर ढंग से प्रस्तुति बना दी, तो सारे देश के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे सबको आना पड़ा और वोटिंग सिस्टम हुआ जो इनको इंपीचमेंट दिया जाए, ये प्रेसिडेंट और ये गद्दी में रह नहीं सकता। फिर भी प्रेसिडेंट देश के लिए बड़ा अच्छा था, किंतु अपनी पर्सनल जीवन में कुछ गलती कर बैठे, और जब पूछा गया वो झूठ बोल दिए। एक झूठ उन्होंने अपने कार्यक्रम में बोला, तो उस झूठ के कारण इंपीचमेंट तो उनको हुई नहीं क्योंकि देश के बड़े अच्छे प्रेसिडेंट थे, परंतु जब उनकी समय निकल गया, मतलब पद से वो निकल गए 8 साल के बाद, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने ये मांग की जो मैं लॉ प्रैक्टिस करना चाहता हूं, आई नीड लाइसेंस बैक एज ए प्रेसिडेंट, ही कैन नॉट प्रैक्टिस। तो प्रेसिडेंट जब नहीं रहा वो लॉ, यू नो दैट व्हाट द जज सेड, बिकॉज व्हेन यू आर प्रेसिडेंट यू स्पीक लाई, आई डोंट ट्रस्ट यू, आई विल नेवर गिव यू लाइसेंस, एंड दिस इज ट्रूथ, ही नेवर गेट द लाइसेंस। इसलिए जिहाग्रे बंधनम भयम, जीव के अग्रभाग में भय का भी कारण छुपा है। ओ जीवाग्रे मरणम ध्रुव, जीव के अग्रभाग में मृत्यु भी आता है, डेथ पेनल्टी भी कोर्ट डिसाइड करता है और व्यक्ति मृत्यु को भी स्वीकार करता है। इसलिए जो भक्त हैं, प्रचारक हैं, देश को चलाने वाले नेता लोग हैं, सभी को वाणी की पवित्रता एक उत्तम रोल रखता है अपने जीवन में। हरे कृष्ण बोलो, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपादेर भक्त वृंद की जय, जय हो।